पृष्ठ संख्या 29। कोई आदमी अगर घटिया है तो रग रग जैसे दुखने लगेगी। यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्वभाव और व्यक्तित्व ही उसका निजी व्यक्तित्व है, जिसने वैवाहिक संबंधों को भी हमेशा उलझाया ही। वह बराबर विश्लेषणकर्ता की विवाह नाम के समझौते का, एडजस्टमेंट का, पर अगर दोनों ओर से हो तब न। अगर दोनों ही अपने अपने ढंग से जीना चाहते हों, दोनों ही अपनी कामना पूर्ति के लिए एक दूसरे से कुछ चाहते हों, कुछ ऐसा जो दोनों के पास दे सकने के लिए नहीं है, तो हालांकि कभी कभी इस नए वातावरण के नए असर की अनुभूति तन मन को भर देती है और जीने और काम करने की कामना को उससे उकसाहट भी मिलती, लेकिन यह अनुभूति भी उसके साथ स्थायी नहीं रह पाती। तनाव के उलझनों के क्षण बार बार आते रहते। मैं का प्रश्न, अपने अस्तित्व का प्रश्न, स्वतंत्र होकर लेखन की छटपटाहट निरंतर बढ़ती जाती। तुम जो हो वह भी बनी रहना चाहो और अतिरिक्त भी लेना चाहो, वह क्यों कर होगा? किसी दूसरे को उपादान के रूप में कभी मत ग्रहण करो, पुरुष हो, भावना हो या पत्थर। अपने से बाहर उसके स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकारो, फिर उसे छुओ। देना भी एक उपलब्धि है, उसमें भी सार्थकता है। लगता है इन्हीं द्वंद्वों के आसपास आषाढ़ का एक दिन नाटक का कथानक बुना गया है। मल्लिका के समर्पित लेकिन स्वतंत्र और सार्थक व्यक्तित्व में क्या इसी की परिणति है? यूं भी उपादान न बनने की चेतनता और उससे उत्पन्न द्वंद्व उसके लगभग सभी पात्रों में है। क्या कालिदास, क्या नंद, क्या सुंदरी, क्या सावित्री और क्या पुरुष एक, सब जैसे अपने अपने व्यक्तित्व के लिए जूझ रहे हैं। अंधेरे बंद कमरे के मधुसूदन का जीवन भी राकेश का प्रतिबिंब है। वह भी कभी गलियों में, कभी सड़कों पर, कभी कस्साब पूरा की बस्ती में, कभी कनाट प्लेस में भटकता है। टूटकर जीने की स्थिति उसे स्वीकार नहीं है। समझौते के स्तर पर वह जी नहीं सकता, इसीलिए भटकता छटपटाता है। किसी भी परिस्थिति में जीने के प्रति अपनी ईमानदारी का आग्रह आज की षड्यंत्र भरी दुनिया से हमेशा एक टकराहट पैदा करता है। यह टकराहट द्वंद्व और पूरी संबद्धता की खोज उसके नाटकों, पूरे साहित्य में मौजूद है। राकेश और राकेश के पात्रों के लिए जीव की तटस्थता कुछ नहीं है। जिधर प्रवृत्ति है उधर बढ़े हुए चरण में ही जीवन की सार्थकता। अगर वह संभव नहीं हो रहा है तो वही द्वंद्व है, संघर्ष और तनाव है। ऊपरी नैतिक बंधनों, सामाजिक नियमों, पवित्रतावादी दृष्टि के प्रति राकेश का दृष्टिकोण हमेशा विद्रोहात्मक रहा है। वह स्पष्ट कहता है कि निवृत्ति का कोई भी दर्शन मन को नहीं बांधता। अगर सृष्टि की निरंतर गतिशीलता का आधार एक आंतरिक प्रवृत्ति ही है तो क्यों मनुष्य के लिए नहीं? प्रवृत्ति के तिरस्कार का अर्थ है मृत्यु। और सचमुच जब उसे लगता है कि दो व्यक्तियों में कोई परस्पर आकर्षण न होने पर उसे ढोते जाना कितना निरर्थक है, तो वह अपने को उस परिस्थिति से मुक्त कर लेता है। संदर्भ 1, सारिका, मार्च 1973, पृष्ठ संख्या 61। 2, सारिका, नवंबर 1968, पृष्ठ संख्या 64। पृष्ठ संख्या 30। यद्यपि यह उलझाव और मुक्ति राकेश का स्वभाव है, लेकिन यह भी सही है कि विवाह संस्था को लेकर या विवाह को एक सामाजिक नियम के रूप में लेकर वह अपने को बहुत आश्वस्त नहीं कर पाता था। सन 1947 के सरस्वती के जून अंक में प्रकाशित उसका निबंध ब्याह कर ही लूं उसके विचारों को स्पष्ट करता है। ब्याह कमबख्त तो होकर बीतने वाली चीज नहीं, ब्याह मानवीय असफलता की सीढ़ी है। ब्याह देखा सुना जरूर है पर कभी महसूस नहीं किया, राम जाने अनुकूल बैठे या न बैठे। ये विचार तब तब आए हैं जब भी घर में विवाह का प्रस्ताव आया है। भारतीय दृष्टि से जिस तरह लड़की पसंद की जाती है, जिस तरह घर वाले लड़की के गुणों के संबंध में, बहू आने से होने वाले फायदों के संबंध में कहते हैं, तब तब यह प्रश्न उठा है कि सब किसी न किसी तरह फायदे में रहेंगे, शायद मुझे भी कोई लाभ हो पर नहीं। यानी इन सामान्य बातों में भी राकेश की मनः स्थिति प्रत्यक्ष होती है। मूल व्यक्ति, मैं को भुलाकर कुछ किया जाना उसे एक खिलवाड़, एक कृत्रिम असहज वातावरण लगता है, लेकिन फिर भी एक घर आत्मीयता, प्यार के भरपूर एहसास की खोज में शायद यह व्यक्ति पुनः पुनः बंधन लेता गया, तोड़ता गया और फिर दूसरा विवाह भी हो गया एक जाने पहचाने परिवार में। लेकिन यह भी उसके भाग्य का क्रूर खेल था, बीते हुए कल का वैराग्य और उगते हुए कल का अनुराग। विडंबना ऐसी कि मुकदमा लड़कर तलाक की असफल कोशिश करनी पड़ी। इसी सारे द्वंद्व के बीच एक और जिंदगी कहानी लिखी गई महाबलेश्वर में। यह कहानी व्यक्तिक स्तर पर राकेश के दोनों वैवाहिक संबंधों और उनसे उत्पन्न द्वंद्व की गहराई तक हमें ले जाने में सहायक होती है। यह अकेली कहानी राकेश के स्वभाव, मानसिक तनाव, उलझनों और आंतरिकता की खोज में व्याकुलता से भरे व्यक्तित्व का आज के आदमी के द्वंद्व का प्रतिनिधित्व करती है। इस सारे संघर्ष का अंत हुआ तब जब अनीता उनके जीवन में आ गई। अनीता, जिसने समझा किस कदर वह इंसान एक घर चाहता रहा अपनी जिंदगी भर, जबकि दुनिया यही जानती थी कि वह कभी घर का होकर नहीं रह सकता था। तुम तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना कभी, लहरों के राजहंस नाटक की रचना इसी अत्यंत निजी लगाव के दौरान हो रही थी या लगभग हो चुकी थी। वह पूरा रोमांटिक प्रणय और सौंदर्य से भरा पूरा वातावरण, कामोत्सव इस नाटक में व्याप्त है। धीरे धीरे एक भटकता व्यक्ति एकदम घरेलू हो गया, आसपास अपना एक छोटा सा परिवार, जख्म भर गए। लेकिन राकेश का स्वभाव यहाँ फिर आड़े आया। वह एकदम घरेलू बनकर भी नहीं रह सकता था। घर में रहकर बहुत सी शाखों, जड़ों, फलों, फूलों का एहसास होता, लिखना मुश्किल हो जाता है। कमरे का एकांत तो मिल जाता है, रूह का एकांत नहीं मिलता। लिखना राकेश का पहला कमिटमेंट हमेशा रहा। वह अपने लेखक के लिए कुछ भी एकदम झटके से तोड़ सकता था। संदर्भ एक, सारिका, मार्च 1973, एक खाने वाला आदमी, पृष्ठ संख्या 65। पृष्ठ संख्या 31। पहले नंबर पर मेरा लेखन है, दूसरे नंबर पर मेरे दोस्त हैं और तीसरे नंबर पर तुम हो, लेकिन तीनों ही मेरे लिए बहुत जरूरी है। यह है राकेश का ईगो, जो हर प्रसंग में सामने आता है और विरोधी परिस्थितियों में झुकने दबने नहीं देता। व्यक्ति की दृष्टि से कुछ भी करने का कोई अर्थ नहीं, लेकिन लेखक की व्यवस्था एक अनिवार्यता है। सब तरफ से ऊब ऊब से छुटकारा पाने के लिए शहर से दूसरा शहर, एक ही शहर में बदलते घर, एक ही घर में बदलता माहौल, सचमुच यह अंतर विरोध, आंतरिक आकुलता और अनिश्चय अस्थिरता राकेश का सहज और निजी स्वभाव है। यह स्वभाव और राकेश की कठिनाइयाँ उसके लेखन में बाधक भी हुई और उसकी रचनाशीलता में सहायक, बल्कि अनिवार्य मांग भी। लेकिन जब वह दूसरों को अपने मित्र राजेंद्र यादव को बड़े व्यवस्थित ढंग से सोचते लिखते देखता है तो आश्चर्य भी होता है, स्पर्धा भी। बंद कर काम करना लिखना भी राकेश के लिए संभव नहीं है। जमकर काम करने के लिए अपने मन को उकसाने पर भी संकल्प का क्षण नहीं आता, रह जाता है केवल एक डिप्रेशन। व्यवस्था से उखड़ने वाला व्यवस्थित क्यों कर होगा? राकेश ने अपने व्यक्तित्व, अपने लेखक को, स्वभाव को, यात्रा का रोमांस ललित निबंध में बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया है। यायावरी वृत्ति ही राकेश की मुख्य वृत्ति है। उसके लिए यायावर की खोज, उसकी अस्थिरता अपने में ही एक सिद्धि है, क्योंकि गति का हर क्षण उसे रोमांचित करता है। वह वातावरण और परिस्थितियों के दबाव से नए व्यक्तियों के साथ अस्वाभाविक संबंधों के बीच जीना नहीं चाहता। यात्रा करते रहने में व्यक्ति अपनी आंतरिक प्रकृति के अधिक अनुकूल होकर जी सकता है, अधिक उन्मुक्त भाव में अपने को नए अनुभवों के बीच खुला छोड़ सकता है। उस खुलेपन से उसके नैतिकता के मानदंड बदल जाते हैं। वह एक आरोपित नैतिकता में न जीकर अपनी आंतरिक नैतिकता के अनुसार जीने लगता है। जीने के ऐसे ही क्षणों को वह अधिक सार्थक मानता है। पूरी धरती, पूरे आकाश से आत्मीयता स्थापित करते हुए वह अपने संबंधों के विस्तार को असीमित रखना चाहता है। इस कृत्रिम झूठी दुनिया में वह अपने को फिट नहीं कर पाता। साहित्य क्षेत्र में चलने वाले हथकंडों, छल कपट, षड्यंत्रों से उसे खास नफरत है। एक पूरी राजनीति, फैशन के नाम पर अकेलेपन, अजनबीपन, आत्महत्या जैसी बातों से चिढ़ है। उन लोगों को देखकर उसे निराशा होती है जिनका आंतरिक संस्कार कुछ ऐसे सांचे में ढला है जिसका अपनी जमीन के साथ कोई संबंध नहीं है। राकेश ने हिंदी भाषा, भारतीय लेखक और भारतीय साहित्य को हमेशा सम्मान दिया। उसको लेकर कोई कॉम्प्लेक्स उसमें नहीं रहा। उल्टे हिंदी लेखक को उसने दयनीय स्थिति से मुक्त किया। उसके व्यक्तित्व के प्रति बाह्य और आंतरिक दोनों के प्रति सम्मान भाव पैदा किया। राकेश का पूरा व्यक्तित्व एक जटिलता लिए हुए है। वह आज की परिस्थितियों और परिवेश में आदमी के द्वंद्व का प्रतीक है, आदमी की सेंसिटिविटी का एक उदाहरण है। पृष्ठ संख्या 32। इस व्यक्तित्व ने हिंदी लेखन को, खासकर नाट्य लेखन को, नई दिशा दी। अंतर के सूक्ष्मतम स्तरों तक उसे पहुंचाया। कहीं भी अपनी, केवल अपनी और निश्चित जगह बनाने बनाए रखने की हसरत और कोशिश राकेश के मन में हमेशा रही, चाहे वह कॉफी हाउस के कॉर्नर में अपनी सीट ही क्यों ना हो। किसी दिन खाली न मिली तो कॉफी हाउस भी बेगाना लगने लगा। हिंदी नाटक क्षेत्र में राकेश का नाटककार अपनी अकेली जगह बनाने की हसरत पूरी कर सका, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर अचानक ही 3 दिसंबर 1972 को उनका देहांत न हो गया होता तो संभवतः हिंदी को उन्होंने और अधिक सशक्त, सृजनात्मक अनुभव से युक्त नाटक दिए होते। निःसंदेह हिंदी रंगमंच और रंगकर्मियों को एक सम्मान का भाव और महत्व उन्हीं के नाटकों के माध्यम से मिला।